राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 मई 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परापुरुषनिबद्धं परं ब्रह्म राकृति सौन्दर्यस्तावसर्वस्वं वन्दे दन्दाकृतिमुहो प्रपन्नपारिजाताय तोष्णे श्रीगोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतानुगुह्ये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ओनेन्द्रसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं प्रणयचत्तमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ति गोविन्दो नमस्ति। नारायण 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 नारायण।
क्या विशेष बात नहीं पूछी है, शंकर भगवान की महिमा सुना ऐसा पूछा। पत्र आया था कि शंकर भगवान की महिमा सुना, कोई विशेष बात नहीं पूछी।
नारायण 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 नारायण। गीता में आया है उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। आत्मैव हिषात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। अपने आप अपना उद्धार करे, अपने आप अपना पतन न करे। आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना बैरी है। जो अपना उद्धार करता है वो अपना मित्र है, और अपना ही पतन करता है वो अपने आप ही बैरी है। तो अपना उद्धार अपने पर है। गुरु महाराज कल्याण कर देते हैं, संत महात्मा कल्याण कर देते हैं, भगवान कल्याण कर देते हैं, तो फिर कैसे भी अपना ही उद्धार करे। कैसे कहा, गुरु महाराज उद्धार तभी करेंगे जब हम गुरु मानेंगे। संत महात्मा को भी हम संत महात्मा मानेंगे तब उद्धार करेंगे। भगवान भी हम भगवान मानेंगे तब उद्धार करेंगे। तो मूल में तो अपना ही उद्धार अपना अधीन रहना। हम जब तक उद्धार नहीं चाहते, गुरु महात्मा भगवान को नहीं मानते, तब तक उद्धार दुनिया को उद्धार जानते आइए। संत महात्मा भी होते आए हैं, गुरु भी होते ही आए हैं, और भगवान तो है ही, फिर उद्धार क्यों नहीं हुआ? हम स्वीकार नहीं करते, यही बात है। सबसे मुख्य बात ये है, अपने हम आप उद्धार के लिए उत्सुक हो जाए और स्वीकार करें। भगवान हो करें, महात्मा हो करें, गुरु हो करें, किसी को ही कर ले। मूल में उद्धरे आत्मनात्मान, अपना उद्धार अपना करें। बंधुरात्मात्म नस्ते ये नात्म आत्मन अनात्म नस्तु शत्रु से भर्ती सात्म शत्रु। तो अनात्मा है अपना उद्धार नहीं चाहता, ऐसे पुरुष का उद्धार कोई कर नहीं सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भगवान ने इसको स्वतंत्रता दी है। ये स्वतंत्रता से चाहे दिन जा सकता है, जैसे सुबह मैंने कहा था कि भगवान शरीर देते हैं, कृपा करके मानव शरीर देते हैं, पर मानव शरीर से क्या होता है तो वहां बताया कि स्वर्ग नरक अपवर्ग निषेधी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, ये छह बातें बताई मैंने, सुबह सात बताई थी। ज्ञान वैराग्य भक्ति देते हैं और स्वर्ग और नरक देते हैं, स्वर्ग नरक और मुक्ति देते हैं, और एक बताए थे 84 लाख जोड़ी देते हैं, 84 लाख जोड़ी, ये साथ में हुई ना। नरकों में क्या था, नरक है योनि विशेष नरक, एक स्थान विशेष नरक, ऐसे दो भेद हो जाते हैं। तो भगवान तो ये देते हैं मनुष्य शरीर, जिस मनुष्य शरीर से उद्धार भी कर सकता है, पतन भी कर सकता है। आज एक बात आई मन में, गोस्वामी जी महाराज ने राम प्रिय लागो हुए राम, तो कामना में फंस करके कुलटाओं के वशीभूत होकर झूठ कपट जालसाजी बेईमानी विश्वासघात हत्या, कौन सा वो पाप है जो वो नहीं कर सकता। धुंधुकारी कथा प्रसिद्ध है, भागवत सुनते हैं हमको पता ही है, गोकर्ण की धुंधुकारी, आत्मदेव के दोनों बेटा थे। तो मानव शरीर से प्रेत भूत पिशाच बन सकता है, कीट पतंग सांप बिच्छू बन सकता है, मानव शरीर से नरक में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, ब्रह्म लोक तक में जा सकता है, परंतु गतागतं काम कामाल बनते और मुक्ति को प्राप्त हो सकता है और भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकता है, जिस भक्ति के प्रभाव से भगवान उसके वश में हो जाए। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा एक जीव के वशीभूत हो जाए, ऐसा मानव शरीर है, एक मानव शरीर इतना विलक्षण है, इतने बड़ी कीमती चीज को प्राप्त करके फिर नरकों की तैयारी कर ले, 84 लाख जोड़ी की भूत प्रेत पिशाच की नरकों की तैयारी कर ले, कितने अनर्थ की बात है। इसमें खास चीज क्या है तो सुबह कहा था व्यवस्थायात्मक बुद्धि एका, निश्चय करने वाली बुद्धि एक होती है, जो अपना कल्याण करना है एक होती है। दूसरे अध्याय के 41-44 तक का ये प्रकरण है। तो व्यवसाय अपना बुद्धि एक है, यहां से आरंभ होता है और भोगेश्वर ये प्रसवता नाम तया प्रतिशेषम व्यवसाय आत्मा का बुद्धि समाज हो न बिजी ऐसे। इस व्यवसाय में बुद्धि की प्राप्ति कैसे होती है, किसको नहीं होती, तो बता कि 44 श्लोक में भोग और ऐश्वर्य की जैसे आसक्ति है, सुख भोगने की और संग्रह करने की ये आसक्ति है, जिसकी वो संग्रह धन का हो वस्तुओं का हो, हम तो संग्रह विद्या का भी संग्रह ही कहते हैं भाई, क्षमा कर देना, ब्रह्म विद्या की बात और है, परंतु शास्त्रों का पठन करके उनके संग्रह कर लेना ये भी एक प्रतिग्रह है, परिग्रह है। प्रतिग्रह तो न्याय ग्रह में निर्तव होता है और संग्रह वो परिग्रह है। अपरिग्रह जन्म कथमता संबोध अपरिग्रह संतोष तपस्या इसी प्रकार नियम और अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग अहिंसा सत्य इसमें अपरिग्रह आया है। अस्ते पर अपरिग्रह तो परिग्रह न करना संग्रह करने की बुद्धि न हो। संग्रह करने की भी संग्रह कर लो। संग्रह इतना बाधक नहीं है जितना संग्रह करने की बुद्धि बाधक है। संग्रह तो हो न हाथ की बात नहीं है, पर संग्रह की बुद्धि रखना और न रखना ये हाथ की बात है। इसमें स्वतंत्र आदमी ऐसे भोग भोगने की बुद्धि न हो। भोग मिले न मिले ये हाथ की बात नहीं, परंतु भोग भोगने का ही उद्देश्य है, अपना सुख भोगना है तो सुख भोगने की आसक्ति से बहुत पाप होते हैं। संग्रह करने की बुद्धि से बहुत पाप होते हैं। आज अगर देखा जाए तो ये झूठ कपट जालसाजी बेईमानी विश्वासघात काला बाजार जो कुछ किया जाता है सब एक ऐश्वर्य के लिए। पदार्थों का संग्रह हो जाए, रुपया मेरे पास हो जाए, इसी बात की संग्रह के लिए। ऐसे भोगों की आसक्ति से ही ऐसी दशा होती है। मेरे मन में आई ऐसी बात कि जैसे लोभ के कारण आदम पाप करता है, ऐसे काम के कारण प्राप्त कर पाप करता है। जिसके भोगना शक्ति है वो झूठ कपट जेल शादी बेईमानी विश्वासघात धोखा चोरी डकैती सब कुछ कर सकता है। आत्महत्या दूसरों की हत्या मनुष्य हत्या ब्रह्म हत्या तक कर सकता है, उसमें कोई बाकी नहीं रहता। काम क्रोध तथा लोभ ये तीन नरकों का दरवाजा बताया है। तो काम क्रोध हो भी जाए थे तो काम ने बाधा में से क्रोध पैदा होता है। काम लोभ प्रवर्तक है, मार्कंडेय पुराण में आया है काम से लोभ होता है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी जो लाभ होगा तो लोभ पैदा हो जाएगा। लोभ के वशीभूत होकर के मनुष्य बड़े बड़े दुराचार कर देता है। ऐसे काम के वशीभूत होकर के ये जितने पाप बताए बड़े बड़े महापाप कर सकता है। आश्चर्य जैसी बात है ये बात। तो आत्मा ही आत्मनो बंधु आत्मा ही मेरी पूरा आत्मा अपना आप ही भैरी है। जब इन भोगों में पदार्थों में राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है संग्रह और भोग भोगने में, तो परमात्मा प्राप्ति की बुद्धि नहीं होती उनकी। समाधो न भी दिए थे परमात्मा तत्व में निश्चय वाली बुद्धि उनकी होती ही नहीं। उनकी बुद्धि तो भोग भोगना और संग्रह करना इसमें ही रहती है। इसमें जिसकी बुद्धि है और बता दिया कि वो तयाग पुष्पित वाणी है उससे चित्त अवृत हो गया। भोग भोगने की महिमा करने वाले जितने वेदों के वाक्य है, ऐश्वर्य की प्राप्ति करने में जितने वेदों के वाक्य है, वे वाक्य भी उद्धार नहीं करते, कल्याण नहीं करते। तो आप हृत से यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन से अभिपस्थित वेद वाद रता पार्थ ध्यान स्थिति वादे न काम आत्मा न स्वर्ग बरा। ये कामना जिसके भीतर है स्वर्ग बरा। तो इसमें वाणी आती है भोग भोगता व्यंजन पद में भोग मिलते हैं, इतना धन मिलता है, इतना आधिपत्य मिलता है, इतना राज्य मिलता है, संतोष संपत्ति मिलती है बहुत बड़ा भारी सम्मान आदर सत्कार मिलता है, महिमा होती है। इन चीजों में जिनकी आसक्ति है और सुख भोगने की जिसकी आसक्ति है, उनकी परमात्मा के प्राप्त का निश्चय हो नहीं सकता। ये गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में है, आप विस्तार से टीका देख रहे तो इसके वशीभूत न हुए वे ही अपने व्यवसायत्मक बुद्धि एक बुद्धि कर सकते हैं। मन लागो बहु मारेगा चल मा टूटा चल कृष्ण दास कैसे करे संसा है न भजन। तो कई चीजों की चाहना जब होती है सुख भोग की और संग्रह की, इसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है। संसार जितना है देखा जाए तो प्राय इन दो में ही फंसा हुआ है, भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में संग्रह करना और सुख भोगना, प्राय मनुष्यों की दशा यही है, देवताओं की यही दशा है, बड़े बड़े तपस्वियों की भी यही दशा होती है। भगवान के प्यारे भक्त है जिनको भगवान ही प्यारे लगते हैं, ये तो भगवान है, वे तो भाई निराले हैं, उनकी बात तो हम नहीं कहते। और संसार में फंसे हुए वे भोग ऐश्वर्य में आ सकते हैं, वे परमात्म विषय बुद्धि कर नहीं सकते, हो नहीं सकती उनकी। वे लग भी जाते हैं ना तो विधि बस सजन कुसंगत पर ही फड़ी मारी जब गुणानुसार अच्छे पुरुष कुसुम पड़ जाते हैं तो बहुत पतन हो जाता है, और साधारण कुसंग मिल जाता है तो बहुत ही गिर जाता है। ये संग है इसकी बड़ी महिमा है, सत्संग की उद्धार में महिमा है, ऐसे कुसंग की पतन में महिमा। सुधा सराइये अमरता और गर्व सराइये मेज, अमृत की महिमा करे एक बूंद है तो अमर हो जाए, ऐसे कहते जहर की एक बूंद खा ले तो मर जाए, इस दोनों अलग अलग महिमा है। ऐसे सत्संग और कुसंग की बहुत बड़ी महिमा है, कुसंग की महिमा पतन में है, सत्संग की महिमा उद्धार में उत्थान में है। तो सत्संग के द्वारा आदमी सुगमता से कल्याण कर देता है, ऐसे कुसंगता से कुसंगी से बहुत जल्दी अपना पतन कर देता है, बड़ा भारी अनर्थ कर देता है। ऐसी बात देखने में आती है, सुनने में आती है, इतिहास में आती है, विचार करने से ठीक मालूम देती है। तो अपना उद्धार करना है इस विषय में एक निश्चय कर ले कि हमारे से ये काम करना है, वो जगदिग भटकेगा नहीं। सच्चा जिज्ञासु होता है, सच्चा मुमुक्षु होता है तो अपना उद्धार कर देता है। सच्चा मुमुक्षु मुक्ति हो तो जिसमें मुक्ति होती वही देता है। जैसे सच्चा लोभी पैसा पैदा होता है उस काम में लग जाएगा, पर जहाँ पैसा का नुकसान होता है अथवा पैसा कम होता है तो उसमें मन नहीं लगेगा, वो तो अधिक से अधिक पैसा पैदा हो उसी में मन लगेगा। इसी तरह से ही जिसको अपना उद्धार करना है, मुक्ति जागृत हो गई है तो जिससे मुक्ति नहीं होती ऐसे काम वो लग सकता नहीं, लगता है तो अपना कल्याण हो जाए, ये एक कमजोर बात है, सच्ची नहीं है। भीतर की सच्ची बात हो तो ये चेत हो जाता है, जैसे लोग ही आदमी के चेत रहता है, जान करके नुकसान के काम में नहीं जाता, ऐसे जिसके मुक्ति की इच्छा है वो नुकसान काम में नहीं जाता, नुकसान दूर रात थोड़ी पैदा में भी नहीं देता हूँ। लोभ होता है ना, थोड़ी पैदा में मन नहीं लगता, अधिक से अधिक पैदा करता है। प्रयत्नार्थ तो मानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म सर्वसिद्धस्तत्वो जाति परांगतिम्। इस श्लोक पर गूढ़ार्थ दीपिका है मधुसूदनाचार्य की, प्रयत्नार्थ ज्ञानवान अस्तु। जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं और योगियों के कुल में जन्म लेते हैं वे प्रयत्नार्थ यतमान, दो यत्न होते हैं प्रयत्नार्थ यतमान, यदि प्रयत्न जाते दो प्रयोग किया प्रयत्न पूर्वक कैसा करते हैं तो अपना उद्धार हो जाए, असत करते हैं वो यत्न भी यतमान करते हैं प्रयत्नार्थ। प्रयत्न क्या, आज जितना भजन स्मरण किया, सत्संग किया, शास्त्रार्थ किया, अध्ययन किया, सदविचार किया, सत्चिंतन किया, कल इससे ज्यादा होगा, परसों इससे ज्यादा होगा, तरसों इससे भी ज्यादा होगा। मामूली उन्नति में, मामूली लाभ में वो फंस नहीं सकता, उसकी व्याकुलता होती है। जैसे लोभी आदमी है, थोड़े पैसों के पैदा होने में कैसे फंसेगा, अधिक से अधिक उपजाओ, पैसा हो नहीं तो इसमें राज की बात नहीं, परंतु पैसा पैदा होगा तो अधिक में फंसेगा। पर लोभी के इसमें बड़ा अंतर है, लोभी होता है उसे जो पैसे मिलते हैं उन पैसों में प्रारब्ध का मुख्य हाथ होता है और अभी प्रयत्न का हाथ गौण होता है, परंतु अपना उद्धार करता है उसमें प्रारब्ध की इतनी बात नहीं है, उसमें तो मुख्य उद्योग ही है, अभी वर्तमान का उद्योग है। तो लोभ में लगा हुआ पैसों के लिए उद्योग कर सकता है, मन पैसा पैदा कर ही दे, लखपति क्रोध बन जाए, ये नियम नहीं है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलने वाले जो सावधान बहन भाई होते हैं, वे इतने सावधान होते हैं, थोड़े लोभ में अटकते नहीं। मैंने इसे कहा था ना, हम लोग गए प्रयागराज में सत्संग सुनने को, तो हमारे साथ एक नास्ती से वो कैसे चल चल वो करना था, मानो मामूली चीज उसे पसंद नहीं आएगी, समूल्य कथा व्याख्यान उनकी पसंद नहीं आएगा, वो उनको खेच नहीं सकता। क्यों खेच सकता है, वो कहते बढ़िया बात मिले तो कौन था भाई, हलवा पूरी बढ़िया लड्डू जलेबी मिलती हो तो सूखे चरणों से कौन माथा पसी करेगा, क्यों माथा लगाएगा, नहीं मिले तो मुझे क्या किया जाए भाई, कैसे खाना है। तो ये पारमार्थिक रुचि में इधर चलने में मनुष्य स्वतंत्र है, धन के कमाने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, प्रारब्ध हो, उद्योग हो और भीतर में लालसा हो तब होता है, पर पारमार्थिक में केवल लालसा, केवल अपने भीतर की लालसा होती तो उसको क्यों स्वतंत्र है, उसमें प्रारब्ध बाधा नहीं दे सकता, प्रारब्ध के अनुसार से विघ्न आ सकते हैं, परंतु प्रारब्ध में ताकत नहीं है कि आध्यात्मिक उन्नति में बाधा दे दे, ये ताकत नहीं है। कर्म हो गए फल रहेगा अपना, वो फल रहेगा जिसमें प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, धन चला जाएगा, कुटुंब नष्ट हो जाएगा, शरीर शक्ति काम नहीं देती, ये बातें हो जाएगी, परंतु भगवत भजन है वो शरीर की शक्ति के अधीन नहीं है, वो बाहर की कुटुंबियों के अधीन नहीं है, प्रारब्ध के अधीन नहीं है, वो तो केवल लगन के अधीन है। सही पड़ा पड़ा ही चिंतन करता है भगवान का, हे नाश इनके अधीन नहीं है, अधीन नहीं है, ये तो बात इस बात से कहता हूँ कि इसी परवशता में होकर मनुष्य ऐसा न समझे कि भी हमारा प्रयोग ठीक नहीं है, इस वास्ते कल्याण नहीं हो रहा है, ऐसा कभी न समझे। बात इससे विलक्षण और है, वो क्या है कि जो जो प्रतिकूलता आती है तो ही तू उसका उत्साह बढ़ता है, पारमार्थिक उन्नति होती है, क्यों प्रतिकार प्रतिकूलता में पुराने पाप नष्ट होते हैं, हृदय शुद्ध होता है, निर्मल होता है, एक भजन स्मरण करने से होता है, एक पापों का प्रारब्ध बन करके स्त्री पुत्र धन का नाश कर रहे, बीमारी आ जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, बिना कारण ऐसा हो जाए, तो उसमें उसकी वृत्ति भगवान की तरफ तेजी से लगती है, भजन की तरफ और तेजी से लगती है। तो विपरीत प्रारब्ध उसकी उन्नति में हेतु होता है, पतन में नहीं। भगवान की तरफ चलने में कोई परिस्थिति विशेष कारण हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसमें वहम हो तो पूछ लेना, फिर कोई शंका हो तो पूछ लेना, अभी जरा चुप रहे, परंतु जरूर पूछना। इसमें मेरे इसका अध्ययन है, मैंने पुस्तकें पढ़ी है, संत महात्माओं से मैंने प्रश्नोत्तर किए हैं, इस वास्ते मेरे बहुत इसका अध्ययन है। नहीं होगा तो आप पूछोगे तो मेरा अध्ययन बढ़ेगा, मेरे लाभ होगा। तो ये वर्तमान की परिस्थिति हमारे बाधक नहीं होगी, क्योंकि भोगेश्वरी प्रसंग तो होते हैं ना, उनके ही तो व्यवसाय तो बुद्धि नहीं होती। भोगेश्वरी जिसके नहीं है उसकी बाधा कैसे लगेगी, इसका नाश होगा तो बाधा कैसे लगेगी, बढ़िया होगा काम। कदरीय ब्राह्मण की कथा आती है एकादश कर्म में, उसका धन नष्ट हो गया, तो धन उसको सब कहा है कि मेरे सुख दुख का हेतु दूसरा नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, कर्म नहीं है, फिर तो भगवान के भजन में लग गया। लोगों ने कितना तिरस्कार किया है, कितना अपमान किया है, बिना कारण धूल डालते हैं, थूक देते हैं, तुम दुख देते हैं, परंतु वो अपने भजन में लग गया। फिर कदरीय ब्राह्मण था, धन का बहुत लोभी था, कुटुंबी भी वृद्ध हो गई, खर्च नहीं करता था, परंतु वे वृद्ध होकर के उसके कल्याण में बाधक नहीं बढ़े, प्रत्युत साधक बढ़े हैं। वो आप सावधान है ना, तो उद्धरे दात्मनात्मन अपना अपना उद्धार करे, इसमें पराधीनता नहीं है, इसमें स्वाधीनता है। परेश पराधीनता कहीं कहीं दिखती है बिना विचार के, विचार शक्ति से दूर हो जाती है। सत्संग अच्छा मिल जाता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो फिर उनके उद्धार में कोई बाधा दे सकता नहीं। जितनी जितनी विपरीत अवस्था आती है उतना ही उतना वो तेज होता है, विलक्षण तेजी आती है उसमें, विशेषता से भजन स्मरण में, भगवान की तरफ चलने में सहायता होती है। अनुकूलता अलबत्ता बाधक होती है। अनुकूलता के विषय में लिखा है पूरा अभ्यास वो भोग ऐश्वरी में आसक्त होते, पहले स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में जाने पर श्रीमान शुद्ध श्रीमान गर्भ में जन्म लेता है, वहाँ जन्म लेने में शुद्ध श्रीमान माना जिनका धन पवित्र है, जात जाति बेईमानी झूठ कपट काले बाजार से पैदा नहीं किया, शुचि नाम श्रीवतांगे लिखा है, शुद्ध श्रीमान गर्भ में जन्म लेता है, तो वो भोग ऐश्वरी उनके पास में सामने रहते हैं, वे रहते हुए भी उनमें परवश होकर के भी परमात्मा की तरफ खींचता है। पहले का भजन स्मरण किया हुआ है, वो योग भ्रष्ट हुआ है, उसमें जन्म ऐसा है तो वो परवश होने पर भी भगवान की तरफ जबरदस्ती खींचता है। ये पापों में लगाने के विशेष लोग नहीं है, ये वो जैसे ये उसको भी सर परवश हो खींच जाता है। ये भोगों में लगाने के लिए नहीं है, परमात्मा में लगाने के लिए है। ये योग भ्रष्ट का प्रकरण है पीछे। स्वास्थ्य भाई परमात्मा की तरफ चलने का जिसका विचार हो जाए खुद का, तो उद्धरे आत्मा अपना उद्धार आप कर सकता है, पतन कर नहीं सकता, पतन होता नहीं है। एक बात बतावे ध्यान देना, ये हमारे पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, मेरे को कोई दुख दे रहे हैं, बिना कारण मेरे को संताप दे रहे हैं, मेरे पर अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, तो ये अत्याचार होता नहीं है, ध्यान देना, खास बात है। अत्याचार करने वाला करता है, जिस पर होता है उसका अत्याचार नहीं है, उनके तो पूर्व कर्मों का फल है अनिष्ट का, जो वो भोग करके शुद्ध हो रहे हैं, नरक मिलते नरकों में भी शुद्धि आती है। इस वास्ते कहा है कि बहु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे ही विधाता। बहु भल बास नरक, नरक निवास नरक है, वो भला है, बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? कि पाप नष्ट होते, नरकों का वो भोग भोगेगा तो पाप भोगने से अंतकरण शुद्ध होता है, तो वो तो भला है। पर दुष्टों का संग खराब है, तो दुष्ट जाति में वृत्ति करके और दुष्ट विषय का बड़ा पतन कर लेता है। परंतु सावधान होता है तो कुसंग में भी उसकी सत्संग हो जाता है, सावधान हो जाता है वो कि भाई ये खतरा है यहाँ पर। वो सड़कों पर कहीं डेंजर लिखा हुआ रहता है ऐसा, तो भाई खतरे की चीज है, यहाँ याद रखो। तो ऐसे भोग ऐश्वर्य मिलते हैं तो वो खतरे में नहीं रहता है कि भाई राम 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 राम, राम यहाँ खतरा है। यहाँ सावधान रहो तो विशेष सावधानी होती है। सुख भोग की प्रकृति प्रवृत्ति में भी सावधान, दुख भोग की प्रवृत्ति में भी सावधान। उसकी सावधान तेजी से चलती है, जैसे कोई कपड़े के बाजार में दुकानदार है और सब दुकानदार कपड़ा बिक्री कर रहा है, तो वो एक एक आदमी अपने बिक्री करने में बड़ा सावधान है। कई सोते हैं, कई जगते हैं, कई दुकान बंद है, कई चलती है, ऐसी हालत में भी अपना कपड़ा बेचने में वैसे ही सावधान है। और सब बाजार के लोग सोते हैं और एक ही दुकान खुली है, तो वो उस समय भी मानो दूसरे कमाते हैं तो भी वो कमाता है, दूसरे कई गफलत में है तो ही कमाता है, कई कमाते है कई नहीं तो ही वो कमाता है। उसी पे एक ही धुन रहती है, अपना पैसा पैदा हो। इसलिए से ये नहीं कि बाजार बंद है तो अपनी दुकान बंद कर दे, बिक्री होती है बंद कैसे कर दे, नहीं कर सकता। इस वजह से साधक होता है, उसके दूसरे साधन करे न करे, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने तरफ एक धुन लगी रहती है, वो अपना उद्धार करता ही है। तो आप ही हाथ बनो बंधु, आप ही अपना भाई है, बंधु है, मित्र है। और शत्रु को तो बताया गाड़ी अनात्मनस्तु, बस शत्रु से वर्षित आत्म ही शत्रुवत। शत्रुवत क्यों कहा? कि वो अपनी जान में तो ठीक करता है, परंतु होता है नतीजा खराब। चोरी करने वाला भी चोरी करता है तो अपने हित के लिए करता है, दूसरों को मारता है तो मांसाधिक सेवन करता है तो ये अपने हित और सुख की दृष्टि से करता है, मगर नतीजा शत्रुवत निकलता है। उसमें सुख होता है जिसकी अपेक्षा दुख ज्यादा संग्रह होता है। आफत ज्यादा आती है, संपत्ति इतनी मिलती नहीं जितनी आफत आती है। तो शत्रुवत बढ़ते एकदम बर्ताव शत्रु की तरह होता है उसका, देखने में अपनी दृष्टि से तो इतना धर्म पतन मिल गया, इतना डाका में मिल गया, इसी चोरी में मिल गया, इतना चालाकी से मिल गया, ऐसे सुख मान लेता है। परंतु उसका भयंकर परिणाम बहुत खराब होता है, फिर वो अपना अपना पतन ही कर रहा है। इस बात से शत्रुवत बरते तो शत्रु की तरह बर्ताव करता है, मन बर्ताव दीखता तो मित्र की तरह है, परंतु शत्रु की तरह ही बरता, उसका नतीजा शत्रु की तरह ही होता है। अपनी दृष्टि से अच्छा मानने पर भी चोरी करने वाला, विचार करने वाला, डाका डालने वाला, मारपीट कर छीनने वाला, वो अपनी दृष्टि में तो अच्छा काम करता है, अपने लाभ के लिए करता है, पर नतीजा उसका बड़ा भयंकर होता है। इस बार शत्रु है तो वर्ते ऐसा, वो अपने आप के साथ शत्रु की तरह ही बर्ताव कर रहा है। जैसे शत्रु नुकसान करता हो ऐसे वो आप ही अपना नुकसान कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? कि बुद्धि विपरीत, एक बुद्धि है ना व्यवसायत्मक बुद्धि, परमात्मा की तरफ लगने वाली एक बुद्धि, ऐसा ते भी था सांख्य बुद्धि योगे तो मानसू इस बुद्धि की महिमा है। सांख्य विषय में कही, अब योग के विषय में कहते हैं तो वो व्यवसाय की बुद्धि एक निश्चय वाली होती है। हमें तो अपना कल्याण करना है भाई, इस वास्ते दूसरा करे कल्याण तो अपना कल्याण करना है, कहीं करते हैं कहीं नहीं करते हैं तो अपना कल्याण करता है, और सब गलत में है कोई अपना कल्याण नहीं करता तो कल्याण करता है। उसमें तो एक ही धुन है, अपना उद्धार कर रहा है। वो कहें कुसंग भी पड़ जाए, विधि विधि सदन कुसंग पड़ी, फणी मणि समझ रही, तो साथ में रहने वाली मणि वो जहर को दूर करती है, जहरीली नहीं होती, सांप के पास रहने पर भी वो अपना गुण न्यारे लगती है। ऐसे जिसके हृदय में अपने उद्धार की लालसा लगी है, कल्याण की लालसा लगी है, उसको कुसंग भी मिल जाए तो कुसंग में भी उसके नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो सावधान है स्वयं। कुसंग असर तभी करता है कुसंग में जब हम सहमत हो जाते हैं। हम अगर सहमत नहीं होते तो कुसंग हमारा नुकसान नहीं कर सकता। हम स्वीकार ही नहीं करते कैसे हो जाएगा। एक याद आ गई बात, एक बाप बेटा जा रहे थे बाजार में होकर, तो एक गाड़ी दे रहा था, लड़के ने कहा पिताजी ये गाड़ी देता है, चलो चलो ये गाड़ी देता है। तो पिताजी बोले अपने लेना नहीं है, बाजार में सब अपनी अपनी बिक्री करते हैं, अपना अपना माल देते हैं, जबरदस्ती थोड़ी लगते अपने लेनी नहीं है, चलो अब चलो लेनी नहीं है। तो वो ले गए ही नहीं, उसकी लेवल ही नहीं है इस बात की, वो क्यों लेगा, जैसा कोई गया नहीं तो कर दे वो। तो वो अत्याचार करता है, होता नहीं है, होता तो तभी जब आप स्वीकार कर देते हो, तब कहते हैं अत्याचार होता है। आप स्वीकार नहीं करते, विपरीत से विपरीत दशा आ गई तो पापों का नाश होता है। मैंने ये बातें देखी है, जैसे बुखार आ जाए, मौखिक जर हो जाए, टाइफाइड हो जाए, तो उसमें देखा है कि वो भोगने के बाद अगर सत्संग की बात सुनने को मिलती तो जल्दी गदगद हो जाएगा। सत्संग की बात बड़ा असर करेगी, क्योंकि वो पाप भोग चुका है, अभी वो अभी भोगा है, तो इससे अंतःकरण निर्मल हुआ है, ऐसी बात देखने में आती है। ऐसी बात है हमारे देखने में आई है, उस पर असर ज्यादा होता है, क्योंकि पापों का फल भोगा है, तो फल भोगने से पाप नष्ट हो गए, जितना भोग दिया नष्ट हो गया, नष्ट हो गया इतना कर अंतर शुद्ध हो गया, तो विपरीत अवस्था में शुद्धि आती है, निर्मलता आती है, और निर्मलता अगाड़ी शुद्ध काम में परमात्मा प्राप्ति में लगाने वाली होती है, तो उसका पतन नहीं होता, उसके नुकसान नहीं होता। नुकसान कैसे, वो नुकसान में सहमत नहीं है तो जबरदस्ती कोई किसी का नुकसान आध्यात्मिक हल कर नहीं सकता भाई। आध्यात्मिक दूर आर्थिक नुकसान भी दूसरा कर नहीं सकता है। हमारे माल चोरी हो जाता है, ठगाई हो जाती है, धोखा हो जाता है तो हो जाता है, परंतु हमारा आर्थिक जो हमारी है ये दर्शन दी हम नहीं तत्व परेशान, हमारी वो चीज दूसरे की हो नहीं सकती। ऐसी घटनाएं घटी है, कई देखी है मैंने, कई सुनी है। हिंदू मुसलमानों का जो दुआ लड़ाई हुई कलकत्ते में, बहुत मारकाट हुई। एक गिली राम जी थे, अपने गोविंद भवन में रहते थे, उनके बीच लुटिया सबकी सब कुछ, कई दिन हो गया, इस जगह तो उनकी तिजोरी कूड़े कचरे में मिली, दुकान कूड़े कचरे में मिली। वहां उन्होंने जाकर देखा, नीचे खड़ में कई हजार रुपए पड़े नोट में मिल गए। अब लोगों तो लूट दिया, कूड़े कचरे में पड़ी है, पर नीचे का खड़ा था वो लोगों ने देखा नहीं, उस खंड में रुपये मिल गए उनके। तो जो हमारी चीज है वो जा सकती नहीं, और जाती है तो हमारी नहीं है, संतोष नहीं होता है। हमारे मन में आता है देखो नुकसान कर दिया इतना, उसने गलती कर दी, हर गलती उसने तो कर दी, पर तो हमारे नहीं हुई, हमें तो होने वाली हुई है, नष्ट होने वाला ही हुआ है, नष्ट नहीं होने वाला नष्ट करता है कोई, भगवान के राज्य में भगवान के जीते जी उनके रहते हुए कोई दूसरे का नुकसान कर रहे, किसके हाथ की बात है। अगर हाथ की बात है तो नीति में श्लोक आता है, सर्पाणांच खलानांच परजव्यापहारिणां अभिप्रायः न सिद्ध्यन्ति तेने तो मत्स्यते जगत। सर्पों का, दुष्टों का, चोर डाकुओं का, अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, इनके मन से ही सिद्ध नहीं होती। अगर इनके मन से ही होने लगे तो संसार को चौपट कर दे, किसी के पास धन रह दे, डाकू है चोर है, उनका अभिप्राय उनका मन और सिद्ध हो जाए, वो मन से ही होने लगे तो किसी धनी रहने देंगे, किसी को सुखी रहने देंगे, ये तो अभिप्राय न सिद्ध होती। तेने तो मनसे जगत तो कोई नुकसान कर सकता नहीं, अगर होने वाला है तो कोई मना कर सकता नहीं। चोर है, डाकू है, अग्नि है, तरह तरह की सगाई है, उसमें धन निकल जाता है हाथ से, वो नहीं था हमारा, इस वास्ते वो गया है। इस विषय में अगर धन चला गया और वो सच्चे हृदय से भगवान की अर्पण कर देता तो पुण्य हो जाता है, उसी धन का पुण्य हो जाता है। कभी वो गया जो किसी बाबा और किसी के लिए एक ही बात हो जाती है, उन्हें अर्पण कर दो भगवान के, निहाल हो जाता है, क्योंकि वो धन चला गया, अपने तो चला ही गया, सच्चे हृदय से भगवान अर्पण कर दे तो धन तो चला गया, पुण्य हो गया, मुंह तो गया, धन गया अपना नहीं गया है, अपना माना था, अपना माना था है नहीं प्राण में अपना होता तो कैसे चला जाता, नहीं तो परेशान परेशान कैसे हो सकता है। तू जाने वाले जाता है, ममता के कारण से दुख होता है, अज्ञान से मूर्खता से दुख होता है, नहीं तो दुख अत्याचार होता नहीं है। अत्याचार करने वाले अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, परंतु जिस पर अत्याचार होता है उसके अत्याचार नहीं होता है। उसके तो क्या होता है, पापों का फल है भोग से, तो उनकी तो शुद्धि आती है, निर्मलता आती है। हम अपना नुकसान अपना ही करते हैं, आत्मा ही वही आत्मा न बंधु आत्मा ही बुरा आत्मा न, अपना नुकसान हम न करें, सावधान रहे तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हमारा नुकसान नहीं होता। बड़ी सावधानी से भजन स्मरण में लगे रहते हैं, मौज होती है, संपत्ति होती है, धन होता है, उन्नति होती है, अच्छे होते हैं, तब तो कई तरह विघ्न आते हैं, पर अवनति होती है, धन नहीं रहता, कोई मान नहीं रहता, तो उसका साधन बड़ा निर्विघ्न होता है, उसकी बाधा नहीं लगती। एक कलकत्ता में फूलचंद जी टीकमानी थे, तो वो कहते थे उन्हें पहले पैसा अजगरा कोठिया कलकत्ते का प्रसिद्ध हुआ, धनी थे अच्छे, वो कहते थे खुद में कही कि मैं टट्टी जाऊं तो सार दरवाजे तक लोग मेरा पिंड नहीं छोड़ते, मैं अपनी स्त्री का सोचता हुआ धोखा जाते मेरा पिंड नहीं छोड़ते। रामायण के प्रेमी थे, मिले थे मेरे, बात करते थे कि अब ऐसी कृपा हुई है, मैं तो रामायण का पाठ करता हूँ, कोई आता ही नहीं, कोई भीड़ होती ही नहीं, तो वो धन चला गया था, तो आपको तो मिट्टी है, उनके साधन भजन बड़ा है, उनके विघ्न कैसे होगा, अत्याचार कैसे करेगा, जो अपना अपना ठीक तरह से चले, तो उनकी अच्छी अवस्था में भी मना नहीं करते थे, भाई तुम मत आने दो, आने कोई आवे जिसको आने दो मिलने दो, तो ऐसी बात है भगत पर अपना ठीक रहता है, उद्धरे अपना उद्धार करे, अपन सावधान रहे, दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागते रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सावधान सावधानी ही साधना है, ऐसा मैंने लेख भी पढ़ा है, तो सावधानी ही साधना है, हर हालत में सावधान रहो तो भजन सुमरण की पैदा होने की बात है, ये धन की तरह नहीं है, धन पैदा होता है पूर्व प्रारब्ध के कारण से, और अपना उद्योग अभिकार मन का लाभ तीन होते हैं, और पारमार्थिक उन्नति में केवल अपने मन का विचार होता है, तो उसमें तो उन्नति होती है, होगी ही, कोई बाधा दे नहीं सकता, बाधा दे जो उन्नति होती है उसकी, तो कोई भी बाधा देता है ना, उस बाधा में पाप नष्ट होते हैं, पुण्य प्रकट होते हैं, और साधन विशेष होता है। इस वास्ते अपना विचार पक्का रखे, तो देखो कोई बाधा नहीं आती, ठीक तरह से उद्धार होता ही है। तो ये निश्चय वाली बुद्धि अपनी बना लेनी चाहिए। क्यों बना रहे कि मैं पहले मनुष्य शरीर भगवान की तरफ से मिला ही उद्धार के लिए है, अपने कल्याण के लिए ही मिला है। यही तनु का फल विषय है ना भाई, इस शरीर का फल संसारी विषय नहीं, भोग नहीं है, आराम नहीं है, इसका फल तो परमात्मा की प्राप्ति है, इसके लिए ये मिला है। तो कौन अत्याचार कर सकता है, कौन बदल दे सकता है, किसकी ताकत बदल दे दे। बल देने वाले भी सहायक होता है, सहायता करने वाला भी सहायक होता है, उदासीन रहने वाला भी सहायक होता है। उधर तो सब एक ही होते हैं, जिसका भाव स्वयं का ठीक हो गया और भगवान में लग गया तो बल देने वाला सहायक बनता है, उनकी उन्नति करने वाला बनता है। यद्यपि दुख देने वाले की नीयत नहीं है किसी उन्नति हो जाए, पर दुख देने पर ही उसकी उन्नति होती है। हो जाए अब क्या करे, वो अपन पापों का फल भोग करके शुद्ध निर्मित हो रहा है। इस बात से अपना उद्धार अपने अधीन है। संत महात्मा भगवान सब आप तैयार हो तो ये मदद जरूर करते हैं, बड़ा फायदा करते हैं। इसलिए मैं तो खुद कहता हूँ कि भाई सत्संग मिल जाता है तो उसे तो ये गोद चला जाता है, कमाया हुआ धन मिल जाता है, तो लाभ तो जरूर होता है, पर तू लाभ लेने वाला ही लेगा। ये संतों का मिलना भी तीन तरह से होता है, एक पूर्व के प्राप्ति के कारण से भी संत मिल जाते हैं, और भगवान की कृपा से भी मिल जाते हैं, और अपने उद्योग से भी मिल जाते हैं। पर तो लाभ लेता है जिसके लाभ लेने की लगन होती है, वो लाभ लेने की लगन नहीं है। कोई प्राप्त से मिल गया तो गाड़ी में बैठे, कोई संसार बैठ गया, घंटा बरसात में रह गए बिछड़ गया, अब लाभ नहीं ले सकते। प्राप्त बेचारा भोगा करके सब तो शांत हो जाएगा। ऐसे दूसरे की कृपा से भी, भगवान की कृपा से भी सत्संग मिलता है, पर तो लाभ लेता है अपनी लगन से। अगर अपनी लगन होती है तो दूसरों के संग से भी नुकसान उसका नहीं होता, उसे लाभ होता है, उसका भी फल उनको भोगने में पड़ता है, तो वो दुख भोगता है। जो जो पुण्य प्रबल होते हैं दुख भोगता, पाप का नाश होता है, नई तपस्या होती है, उनके नुकसान नहीं होता। तो हरेक भाई को अपना उद्धार करना है, ये बात जागृत रखनी चाहिए। जैसे लोग ही अधिक से अधिक पैदा हो ऐसे करता है, तो सच्चा साधक अधिक से अधिक लाभ हो ऐसा करता है। धना धन के लिए तो चेष्टा कर सकता है, पर धन कमा नहीं सकता, प्राप्त नहीं है। परंतु साधक चेष्टा करता है तो अपनी उन्नति अवश्य कर देता है, इसमें कोई बाधक नहीं होता। कितनी मनुष्य बात है, कितनी अच्छी बात है, जो मनुष्य स्वयं मिला ही इसके लिए है। तो इसमें अगर पराधीन है तो स्वाधीन किसमें है, कैसे पराधीन होगा, इसमें स्वाधीन है। भगवान ने स्वाधीनता दी है, भगवान ने कृपा करके दी है, मनुष्य भी मिला है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, तो अच्छे भाग्य से मिला है, उसमें इसका अनिष्ट कैसे होगा। वो अगर अपना अनिष्ट करे तो इष्ट कर भी कौन सकता है भाई, खराब खराब कुसंग करे, खराब खराब खाना पीना करे, खराब खराब काम करे, तो उसे पतन होगा ही। तो वो स्वयं अपना आत्मा ही रिपू अपना भाई, ये आप ही जो पतन करता है, तो अपने आप का पतन ना करे, अपने आप का उद्धार करे, ये भगवान की आज्ञा है। तो अपना पतन और उद्धार करने में हमें खुद हेतु होते हैं, दूसरा कोई हेतु नहीं होता है। हाँ उत्थान करते हैं, उसमें संत महात्मा है, भगवान है और प्रारब्ध है, साधारण जनता भी उसका उद्धार करती है, लोग दुख देने वाले भी उसका उद्धार करते हैं, दुख देने वाले भी, लूटपाट करने वाले भी, दुख देने वाले, कष्ट देने वाले, मारपीट करने वाले भी उसके पापों का नाश करते हैं। तो पापों का नाश होने से फायदा ही होता है, नुकसान क्या होगा। नुकसान तो वही है जिसमें हमारी दुर्गति हो जाए, तो दुर्गति करने में कोई समर्थ नहीं है। हम वर्तमान में दुख दे सकता है, कष्ट दे सकता है, पर दुर्गति तो हमारा ही खराब भाव होगा तब होगा। हमारा भाव उद्धार करना है तो हमारी दुर्गति भी कर नहीं सकता, सदगति होती है। इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, इसमें कहीं भाई की शंका हो तो बोलो, आपकी शंका हो मर्म मर्म की बात पूछना, कोई मार्मिक बात इसमें कोई यू तो नहीं, तो चुपचाप मार्मिक बात तो पूछो, जो शंका है संदेह रहा है तो पूछो। मनुष्य उद्धार अपना आप कर सकता है, ये विषय है। अपना उद्धार करने में आप ही खुद हेतु होता है। गुरु को भी ये मानेगा, संतों को भी ये मानेगा, भगवान को भी ये स्वयं मानेगा, तब होगा ना। तो इसमें पराधीनता नहीं है, इसमें स्वाधीनता है। देखो पुण्य करता है तो चौड़े करता है, पाप अन्याय करता है तो छिपकर करता है। क्यों? इसमें सहायता नहीं है औरों की, और साथ में बाधक होते हैं। और शुभ काम करता है भले स्मरण ढंग से सौड़े करता है, उसमें किसी बाधा की उसमें है ही नहीं। नानी भाई ने कहा है कि बाबा जी मैंने मोड़ियों की कही तो आलसी आए मोड़ियों ने चाहिए, ऐसा कहा है। तो नरसिंह जी मना के वो मोड़िया कह रहे बाबी मत करो बीस, मैं मोड़ियों ठाकुर जी रो बिस्वाई बीस, मैं तो हूँ और कोई मोड़ी एक दो बार, मैं तो मोड़ी हजार बार हूँ। तो मोड़ी करने से क्या हुआ भाई, अपने नुकसान क्या हुआ, अपने ठीक है। मान सत्कार से आता है उसके अपमान बुरा लगता है, जिसकी मान बढ़ाएगी इच्छा नहीं है उसका अपमान क्या करेगा, अपमान की ताकत है कि उसको दुख दे दे, कष्ट दे दे, अनिष्ट कर दे, कोई कर नहीं सकता अनिष्ट, अनिष्ट होता ही नहीं, होने की ताकत ही नहीं है। इस वास्ते भाई अपने सुधार के लिए आप तत्परता से उत्साह बढ़ा रहे हो, प्रेरणानंद मनुष्य तो कल किया जैसे आज तेज, आज से कल तेज, आकर से परसों तेज, चलो अगाड़ी अगाड़ी प्रेरणा भी उत्मान है, बस प्रयत्न से सुधार कर रहे हैं। ये बात कही है गीता जी ने, ये टीका कहा लिखी है पद्म शुद्राचार्य ने। तो हरेक आदमी को पारमार्थिक उन्नति में कभी निराश नहीं होना चाहिए और संसार की आशा नहीं रखनी चाहिए। संसार से आशा रखना तो निराश होना ही पड़ेगा, अगर भगवान की निराश हो जाएगी तो उन्नति बाधा हो जाएगी। इस बात भगवत संबंधी तो निराश होना नहीं चाहिए, संसार की आशा रखनी नहीं चाहिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, संसार की निराश रहना बहुत बड़ा बड़ा सुख है। तो आशा ही परमम दुख नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिद्धि कांता सब सुसुम सुस्वाभ बिंगला। इस बात उद्धर है आत्मन आत्मान नात्मान अवसादी, अपना पसंद न करे, आत्म ही वही आत्मनो बंधु आत्म ही वही आत्मना। इस बात से स्वयं कोई नहीं जानता इस भगवान में, फिर देखो समझा सब ठीक होता। फिर भगवान की कृपा है, संसार सुख देना नहीं चाहते वो भी सुख उसको उन्नति करते हैं, आराम देते हैं वो भी उन्नति करते हैं, सहमत होते हैं वो उन्नति करते हैं, और विपरीत चलते वो भी उन्नति करते हैं। उसका जब ठीक निशाने हो गया तो कैसी दुनिया मिले कैसे संग मिले उसका तो भला ही भला होता है एकदम निरंतर। वो समझे चाहे न समझे, उसकी नियत अच्छी है ना, परमात्मा जब चल रही है तो कौन बदल देगा, दुख देगा तो पापों का नाश करेगा। पुण्य में पुण्य नाश होता है आराम में, सुख में, बढ़ाई में, आदर में, तो सुख ग्रहण नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करने से पुण्य नष्ट नहीं हो गई। ये बात नारायण 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 नारायण।